बलगारिमीन और कर्जे वाले, यानी जिसको अपने कर्ज की वजह से दुश्वार आ रही हो, गारिम उसको कहते हैं। यहाँ आप देखिए कि कर्ज में अगर हम जनरल देखें, जाती कर्जे हैं, तिजारती नहीं। वो कर्जा जो किसी ने जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए लिया, घर की जरूरियात, बच्चों की जरूरियात, कुछ ऐसी वैसी, और फिर दे नहीं सका। इसमें वो कर्ज नहीं है जो तईशात के लिए है, इससे वो कर्ज नहीं है जो आपने अपने माल को और बढ़ाने के लिए किए, इससे मुराद ये नहीं है कि आपने सिर्फ फैक्ट्री एक और थी तो दूसरी लगाने के लिए आपने बैंक से कर्जा ले लिया, और ये आदि मकरूज के लिए भी नहीं है, यानी जो आदि हो चुके हैं, जो इस चीज के यूज टू है कि उनको कर्ज लेने की आदत है, लग्जरीज के लिए भी ना हो। आज के दौर में तो जानबूझ के लोग कर्जे में रहना चाहते हैं। आज जो क्रेडिट कार्ड्स के सिस्टम है, ये सब क्या है, अपने आप को कर्ज में रखने वाली बात है। फिर इसी तरह इसमें एक और शर्त भी होती है कि अपने सारे एसेट्स दे भी दे तो भी वो उसको पूरा ना कर सके। ये नहीं कि अब कर्ज आ गया लेकिन अपना महल में रहता है, घर है, कोठी है, गाड़ी, सब कुछ बेच दे, जेवर ना हो, कुछ ना हो, तो वो ऐसे शख्स को फिर अब गारिम कहेंगे, फिर इसके ऊपर ज़कात की रकम लग सकती है। आजकल तो ऐसे ऐसे फनी सवाल सुनने को मिलते हैं कि पहले हम कर्जा ले लेते हैं लोग, और फिर उसके बाद कहते हैं लोग कि जी अच्छा अब हम पे कर्ज है तो हम पे तो हज माफ है ना, क्योंकि कर्ज क्या है, वो यही कर्ज होते हैं, घर कर्जे पे, गाड़ी कब्जे में, यानी वही बात है ना कि एक की बजाय दो लेना चाहते हैं। एक तरफ से दुनिया की तईशात रख लें और चले, अगर कुछ इबादत से कुछ कफारे होने की उम्मीद थी या दिल बदलने की जरूरत थी तो वहां फिर हम ये आ जाते हैं कि हम कर्ज में, तो हमें तो जरूरत नहीं है इस चीज को करने की। ये बहुत ही ज्यादा काबिले गौर चीज है जिसके ऊपर इंसान वाकई जितना भी गौर करे और अपने अमल को चेक करे तो इस चीज से रुकना है। फिर इसी तरह गारे में एक वो शख्स भी आ जाता है जिसने किसी की जमानत दी कि मैं जमानत देता हूँ ये काम नहीं करेगा। अब वो जिसने जिसकी जमानत दी थी वो शख्स भाग गया या उसने वो काम कर लिया तो ये फंस गया। अब ये राह चाहते कि एक सर पे इसके मुश्किल पड़ी तो अगर ऐसे शख्स की भी ज़कात में से मदद कर दी जाए तो उसकी भी इजाजत है। फिर इसी तरह आगे देखिए, वो फीस सबीलिल्लाह, अगली बात जो है वो फीस सबीलिल्लाह है। इसको थोड़ा सा बहुत तफसील से देखने की जरूरत है क्योंकि लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी, यानी काफी इसमें इख्तलाफ भी पाया जाता है। पहला मानना तो इसका यही बनता है मुजाहिदीन फीस सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से क्या मुराद है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी इस्लाम की सरहदों की हिफाजत, इस्लाम को बुलंद करने की बात, जंगी साजो सामान, जरूरियात, मुजाहिद, चाहे वो मालदारी क्यों ना हो उस पर ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। इसी तरह बाज इसमें और चीजें भी आती हैं, मसलन कौन सी, बाज उलमा ने इसमें हज और उमरे को भी शामिल किया। मसलन अगर कोई शख्स है वो हज और उमरा करना चाहता है, हज करना चाहता है, उसको शौक है, पैसे जमा कर रहा है लेकिन अभी थोड़े हैं, अब उस पर फर्ज नहीं है लेकिन वो करना चाहता है, तो अगर कोई अपने माल में से उसकी मदद करने के लिए कहे कि चलो मैं कुछ मैं डालता हूँ बाकी तुम डालो, तो बाज़ उलमा इसकी भी इजाजत देते हैं, क्योंकि एक हदीस में आता है कि जो हाजी है वो मुजाहिद है, वो ऐसे जैसे अल्लाह के रास्ते में है। फिर इसी तरह आप देखिए कि अगली चीज इसमें आती है तबलीग और दावत का काम। कुछ उलमा कहते हैं कि ये भी फी सबीलिल्लाह है, क्यों, कि जिहाद किसको कहते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह के कलमे को बुलंद करने की नियत होती है। अब अल्लाह का कलमा एक तो तलवारें उठा के वो बुलंद होता है, कब, जब दुश्मन सरहदों पे खड़ा हो, लेकिन एक जिहाद वो होता है कि जहां अल्लाह के पैगाम, अल्लाह की बात को आम करने की जरूरत है, जहां जिहाद, यानी आप देखिए कि नजरियाती जिहाद जिसको आप कह सकते हैं, जहां सोचे बदली जा रही हो, इंटेलेक्चुअल किस्म की वॉर इस वक्त आज हमारे सरों पे मुसल्लत हो चुकी है। इसी तरह आप देखिए कि सूरह फुरकान में आता है जाहिद हम भी जिहादन कबीरा, और इनके साथ जिहाद करो इसके जरिए, और बिही की जमीर वहां कुरान की तरफ है, पीछे कुरान की आयत है कि इस कुरान के जरिए लोगों से जिहाद करो। तो उलमा इन सारे दलाइल को जमा करके कहते हैं कि फिर दीन की स्प्रेडिंग में, दीन को बढ़ाने में, दावा में, ऐसी चीजों में कि जिससे इस्लाम का पैगाम आम हो, लोगों को असल चीज मिले, अगर माल लगाया जाए तो वो चीज भी जिहाद फी सबीलिल्लाह में आती है। फिर किया क्या जाए, क्या फिर बास लोग फिर इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि अच्छा कहाँ किया जाए, फिर वहां लगाएं कि यहाँ लगाएं, तो एक सिंपल सा क्राइटेरियन है, अगर मक्का वाले हालात आ चुके हैं मुसलमानों पे, यानी जुल्म और तशद्दुद इतना है कि आप तलवारें खरीदने की जरूरत है, तो फिर जिहाद कबीर क्या होगा कि इंसान तलवारें उठाएगा, फिर फी सबीलिल्लाह में लगाएगा जंग के लिए, दीन का पैगाम फैलाएगा कब, और दूसरा अगर अमन के हालात है जिसमें दुश्मनी नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो उस वक्त फिर इंसान दीन को फैलाने का काम कर सकता है। यानी मक्का वाले हालात हों तो दीन का पैगाम फैलाना असल है, लेकिन मदीना वाले हालात हो जाए तो किताल मुराद है। कि जब चारों तरफ दुश्मन आ चुके हों। इसी तरह फिर दावा वर्क के लिए जो माल लगता है उसमें भी यही बात है, अगर अमन के दिन है तो उसपे माल ज़कात से दिया जाएगा, और अगर हालात अमन वाले नहीं ज्यादा जिसकी इसकी जरूरत है तो वो किया जाए। बिल्कुल, अगर आप यही सोच लेना कि जरूरत कहाँ है, जब अजर बढ़ता है तो उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि लगाया कब, तो जरूरत कहाँ थी। अगर लोग भूखे मर रहे हैं तो आप कह नहीं इनको किताबें खरीद के दो, तो फायदा किसमें, उनकी भूख दूर कर दे, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको उनको शेल्टर दो। लोगों के घर टूटे हुए हैं और आग को जरूरत है उस वक्त घर बनाने की। अगर ये सारी आपते नहीं, एक रेगुलर नॉर्मल जिंदगी चल रही है, तो फिर उस वक्त फिर सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए इंसान अपने हिस्से को डालता है। आजकल आप देखिए कि मुल्कों के बिगाड़ से ज्यादा जहनों का बिगाड़ आ चुका है, नस्लों के अंदर इल्हाद आ चुका है, लोग दीन के काम को अपना नहीं समझते, अल्लाह के दीन को लोग अपना नहीं समझते, और जो तकलीफ दे हालात लोगों के साथ होते हैं उसके अंदाजे होते रहते हैं। यानी जब भी कोई मुझे ऐसी कॉल आती है या कोई ऐसा मसला पूछता है कि जिसमें अपनी औलादों का रोना होता है, यकीन करें कि मुझे ऐसे लगता है कि ये उनका नहीं, ये मेरा गम है। यानी 15 साल का लड़का है और माँ बाप को मारता है, यानी माँ का फोन आता है और वो इस तरह बिलबिलाने वाली उसकी कैफियत है कि मेरी बात सुन ले, मुझे किसी ने आपका नंबर दिया, मैं क्या करूँ। बेटा है 15 साल का, इकलौता बच्चा है, और सिर्फ इस बात पे कि उसको म्यूजिक सुनता है और दिस एंड दैट, और अपने कानों में कुछ लगा के सोया हुआ है, लेटा हुआ है। सो गए तो फिर बाद में जाके बाप ने कानों से उतारा के रख दिया कहीं, कुछ नहीं उसको किया, और सुबह उठते ही उसने पीटना शुरू कर दिया बाप को कि तुमने उतारा क्यों मेरे कानों से, और सुबह से कमरा बंद करके अंदर भूखा बैठा हुआ है, बताओ मैं क्या करूं। यानी एक इकलौता बेटा, और लोगों की हालतें हैं जो कहते हैं मैं किसी चीज को नहीं मानता। अब सोचिए कि आप तो 15 साल का बच्चा ही कहेंगे ना, माँ तो कहेगी मेरा बच्चा है, लेकिन यानी कैसे हालात हैं, और ये बातें कहाँ से आती हैं कि असल दीन नहीं है। हम जब पानी सर से ऊपर होता है तो फिर परेशान होते हैं, कोई ना कोई वजह तो होगी, हाथ ऐसे थोड़ी उठता है, पहले कुछ और उठता है, पहले जुबान खुलती है। और माँ बाप जितने मर्जी शरीफ हों, लेकिन इसके बावजूद अगर बच्चों के साथ वो दीन का मामला आप नहीं रखते जो रखना चाहिए, नतीजा क्या होगा कि आप बच नहीं सकते। सारी चीजों का एक ही खुलासा है कि जब तक अल्लाह ताला के दीन को उसी तरह लेंगे जैसे कि उसने पेश किया था, तो फिर तभी बात जो है वो पूरी होगी। फिर इसी के बाद आगे देखिए, वब्न सबील, मुसाफिर। मुसाफिर कौन सा है, खा गनी हो या फकीर हो, यानी सफर के दौरान था, मुश्किल पड़ गई, जरूरत आ गई, जेब कट गई, माल देना पड़ा, कुछ हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर ऐसे शख्स को फायदा दिया जा सकता है इस चीज से, यानी उससे माल उसका बढ़ सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा यानी उनके लिए भी एक चीज ऐसी होती है कि अल्लाह ताला ने दीन की वुसअत बता दी कि हर बंदा कैसा है और किस तरह का है। फिर वो सफर जो है वो फी सबीलिल्लाह हो या ना हो, दोनों सूरतों में दिया जा सकता है, यानी दुनिया का सफर भी कोई है, लेकिन हराम काम का सफर बहरहाल ना करे। बाकी इस वक्त मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूंगी जो आप सब खुद भी उससे फायदा उठा सकते हैं, और वो क्या है, ज़कात के मसाइल, इकबाल केलानी की जो सीरीज है उसी की ये नंबर 8 की बुक है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं आपको पूरी बुक ही पढ़ा दूं 2-3 दिन लगा के, लेकिन वही बात है कि फिर लेसन हमारा आगे हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल बुक्स हैं, अगर आप एक एक तौर पे अपने तौर पे एक एक चैप्टर करके देखेंगे तो बड़े खूबसूरत तरीके से बाब बांध के कहाँ फराइज की बातें, कहाँ लगाएं, किसको ना लगा लगता है, कहाँ देने का फायदा ज्यादा, ये तो आप इसको खुद से अपने साथ पढ़ लें। और ये ऐसी बुक्स है, मेरा ख्याल है कि जब बंदा शुरू करता है तो फिर दिल नहीं करता छोड़ने को, तो आप इससे जरूर फायदा उठाएं इंशाल्लाह ताला। आपके लिए बहुत सारी इसमें हदीसें हैं जो मैं यहाँ कोट इसलिए नहीं कर रही कि आप लोग खुद नोट करके जगह या थोड़ी नोट्स में छोड़ दें और आप बाद में उसको लिखेंगे। सारी बातों को पेश करके फरमाए, फरीद अदम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है, कोई इन 8 में 9वीं चीज का इजाफा नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, और कोई ये नहीं कह सकता कि इन 8 की बजाय 7 होने चाहिए, 1 इसमें क्यों आ गया, ये रब की पाबंदी है, इसको पूरा करना पड़ेगा। एक और चीज इसमें जहन में आती है कि क्या ज़कात के माल को पूरी इन 8 मदों में डिवाइड किया जाए कि किसी एक मद में भी दिया जा सकता है, तो दिया जा सकता है, जरूरत और हालात के मुताबिक है। फिर एक और सवाल बन सकता है और वो क्या है कि ज़कात का माल जितना बनता है उससे ज्यादा दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे किसी को भेजा कि जाओ उससे ज़कात लाओ, तो वो जब गया तो ऊंटनियां थी उसके पास, तो उसके जो जितना नसाब बनता था वो एक छोटी ऊंटनी का बनता था, तो जो ज़कात लेने वाला गया उसने कहा ये दे दो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म देते थे, नसीहत करके भेजते थे कि लोगों का बेहतरीन माल ना उठाओ, दरमियाने दर्जे का माल लिया करो। तो उस शख्स ने कहा कि मैं तुम्हें ये बड़ी ऊंटनी देता हूँ, ये छोटी को लेके क्या करोगे, ना ये दूध होती है ना इस पर कुछ सवार हो सकता है। तो इसने कहा, जो लेने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यानी जितनी चीजें वही लो। तो चलो नबी सल्लम के पास चलते हैं, जो वो कहेंगे। फिर ये शख्स आया और इसने कहा कि अल्लाह के सल्लम, मैं इसको कहता हूँ ये बड़ी ऊँटनी ले लो, ये कहता है मुझे छोटी लेनी है। तब आपने फरमाया कि अगर तू खुशी से देता है, कबूल कर लिया और उसके लिए दुआ दी। कैसे दौर थे। और हम तो कहते हैं कि अच्छा ज्वेलरी है ना, तो उसमें स्टोन्स का वेट कटेगा कि नहीं, ये डोरियों का वजन काट के दें या इसके साथ दें। यानी जब खरीदते हैं तो सोने के ऊपर उससे 25% ज्यादा दे के खरीदते हैं। बेकार चीजें जो है वो सोने के वजन में खरीदते हैं। जब अल्लाह को देना पड़ता है तो उसमें से नगीनों को कटवा के देना चाहते हैं। क्या सोचता होगा रब, और क्या उसकी नजरों में हमारा मुकाम होगा। ये इंसान को वाकई सोचने की जरूरत है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, वो इल्म वाला और हिकमतों वाला है। उसको पता है तुम क्या छुपाए बैठे हो, और उसने ये जो हुक्म दिए ये हिकमतों से दिए। ये ऐसे ही नहीं दे दिए कि बस तुम जाओ और ये कर लो और वो कर लो। हर चीज की लॉजिक मौजूद है, हर चीज की दलील मौजूद है हमारे पास। एक दफा तिलावत सुनते हैं यहाँ तक।
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
चलिए आगे देखते हैं 61 आयत से। وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को तकलीफ देते हैं। कैसे? وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, और कहते हैं कि वो कानों का कच्चा है। نَعُوذُ بِاللَّهِ. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ, कह दीजिए कि कानों का कच्चा होना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين, वो अल्लाह पर और मोमिनों की बात पर यकीन रखता है। ورحمت للذين آمنوا منكم, और तुम में से जो लोग ईमान लाए उनके लिए रहमत है। लेकिन वो लोग अपना हशर देख लें जो अल्लाह के नबी को तकलीफ देते हैं। क्या? والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم, वो लोग जो अल्लाह के रसूल को दुख पहुंचाते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब यहाँ से दोबारा बात जाती है उसी चीज की तरफ जो मुनाफिकों के किस्से हम पीछे से देख रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ मुनाफिकों की कुछ और बातें खोल के बयान की जा रही हैं, जो कि सूरत का नाम काशिफा भी है, और हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से मुनाफिकों के पोल खोल रही है। तो यहाँ अब एक और चीज जो हमने देखी वो क्या थी कि मुनाफिक आपके बारे में क्या कमेंट्स देते थे, कि आप कानों के कच्चे हैं, आप बातों में जल्दी आ जाते हैं, जो आपको जो भी बात कहता है आप उस बात को फौरन मान जाते हैं। अब देखिए कि लोग कितने होशियार बनते हैं ना, पहले अपना काम करवा लेते हैं, अपनी बात करवा लेते हैं, और बाद में फिर बातें बनाने वालों में शामिल हो जाते हैं कि देखिए ये कैसे लोग हैं और ये इतनी जल्दी आ जाते हैं और बस बातों में आ जाते हैं। यानी मुनाफिकों को नबी सल्लम से शिकायत क्या थी कि हर शख्स की बात सुन लेते हैं और फिर उसे सच भी मान लेने लगते हैं। असल बात क्या थी कि वो मुसलमानों की बातों पर नबी सल्लम का एतमाद नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि नबी सल्लम हर एक की बात ना सुने, बस हमारी सुने, जो हम कहते हैं ना वही ठीक है, और हम वही कहेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। हमारी साजिशें, हमारी शरारतें आपको इन लोगों की तरफ से पता ना चले, क्योंकि बाज दफा कुछ बातें नबी सल्लम को तो नहीं पता होती थी लेकिन आपके साथियों के जरिए से आप तक पहुंच जाती थी जो मुनाफिकीन से मुतल्लिक होती थी। तो यही बात यहाँ फरमाई गई कि ये आपके बारे में जो बातें कहते हैं वो क्यों कहते हैं, कि आप ना सुने इनकी बातें, क्योंकि इससे इनके फिर अपने पोल भी खुल जाते हैं और ये अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। तो लिहाजा आप इनकी बातों को तवज्जो में ना दें, ये जो कर रहे हैं करने दें, हैं ये झूठे, ये झूठे लोग हैं और इनकी बातें जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि आप उसके ऊपर वक्त लगाएं। तो लिहाजा वह मिन हुम, और इनमें से हुम कौन, मुनाफिकीन में से, अल्लज़ीन युज़ूनन नबी, जो तकलीफ देते हैं नबी को। यहाँ गौर कीजिएगा कि नबी है अल्लाह के, इसके बावजूद भी तकलीफ हो रही है, और इससे ये बात पता चल जाती है कि जब कोई शख्स अल्लाह ताला کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے سکتا ہے تو وہ کسی اور کو کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے دشمن ہوتے ہیں وہ ہر دور میں دشمن ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ ان کی ان باتوں کو سن کے اگر بات مان جاتا ہے تو نعوذ باللہ کو وہ کم سمجھ انسان ہے یا وہ بہت ہی کچے ہیں۔ آپ کا یہ ایک خوبصورت انداز ہوتا تھا کہ آپ ہر سننے والے کی بات کو سنتے تھے، لیکن مانتے وہی تھے، کرتے وہی تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہوتا تھا۔ آج کے دور میں بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نرم محسوس ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہر ایک سے یہ بات کا اظہار کرتے ہیں کہ تم بھی اپنی بات کہو، تم بھی کہو، تم بھی کہو، لیکن ان ساری باتوں کے بعد ماننی کون سی بات ہوتی ہے جو کہ دین کے اور ان دنیا کے حق میں انسان کے لیے بہتر ہو؟ پھر وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُن، پہلے باتیں سنا لیتے تھے پھر آ کے باتیں بناتے تھے کہ دیکھو یہ تو سب کی سنتا ہے۔ کہہ دیجئے نہیں سنتا سب کی ہے، لیکن قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، ان کا سب کی باتوں کو سننا تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ کہ تم جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہو، اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے ہو، مسلمانوں کے ہمدرد ہونے پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، جہاد سے فرار پر تم جھوٹے بہانے بنا لیتے ہو، تو یہ صبر سے کام لیتا ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیونکہ اگر یہ تمہاری باتوں پہ تمہیں پکڑ لیں تو تم کہاں کے رہو گے؟ تو لہٰذا اس چیز پہ تم پریشان ہوتے ہو تو ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عادت بنائی ہے وہ انہی کے حق میں بہتر ہے، تمہیں اس کا بہرحال نقصان ہی ہوگا۔ اور یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور کرم کی بات بھی معلوم ہوتی ہے، آپ کا عفو درگزر، لوگوں سے درگزر فرمانا، یہ ساری چیزیں کسی بھی ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے ایک عورت کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہر بچے کی بات سنے۔ بعض بچے ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درست نہیں، تو ایک دم ڈانٹنے کی بجائے بات پوری سن لینا یہ مسنون عمل ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو آگاہی ہو جاتی ہے، دوسرے کہ آپ مینٹل لیول کو چیک کر لیتے ہیں، اور تیسرا ہوتا ہے کہ جو بات کر چکا ہوتا ہے پھر وہ اس کے خلاف خود ہی حجت بن جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے مثلا خاندانوں میں، فیملیز میں کچھ ایسی پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے مشورے کرتے ہیں، اللہ نے ان کو سمجھ دی ہوتی ہے یا ان کے اندر کوئی تقویٰ ہوتا ہے یا فہم فراست ہوتا ہے، تو اگر ایسا شخص بھی دوسروں کی بات سن لے، اس طرح سن لے کہ ٹھیک ہے ذرا مجھے پتا چلے حالات کیسے ہیں اور کس کا قصور ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ فیصلہ کر دینا یا اپنی رائے دے دینا، دوسرے کی بات کا سن لینا جو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر فائدے لاتا ہے۔ لیکن یہ نبی کرتا کیا ہے؟ یومن باللہ و یومن للمومنین، یہاں یومنو کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لاتا ہے، یعنی مانتا پھر بات وہ ایمان والوں کی، یا تو اللہ کی مانتا ہے، اور آف کورس اللہ کے نبی ہر وہی بات کرتے تھے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اسی طرح آپ ایمان والوں کی بات پر بھی یقین کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ کہ متقی کی بات ہی قابل اعتبار ہے۔ سنتے آپ سب کی تھی، لیکن اعتماد صرف ان پہ کرتے تھے جو سچے مومن تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، جھوٹ اور چغل خوری سے پرہیز کرتے تھے۔ تو اگر وہ ان پر اعتماد کرتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں، کیونکہ ان لوگوں کے اندر ایسے وصف موجود ہیں، اور وہ رحمت للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، منکم تم میں سے، یعنی جن کے اندر ایمان ہے ان کے لیے یہ نبی رحمت ہے۔ لیکن اس کے برعکس والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے کیسا عذاب ہے؟ کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بھی گریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اس مقام سے یہ گر جائیں گے جو انہوں نے اپنی جھوٹی باتوں سے بنایا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی نہیں آ سکیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمائے یحلفون باللہ لکم، قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے اللہ کی، کیا؟ لیردوکم، تاکہ تم کو راضی کر لیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانو مومنین، اگر یہ ایمان والے ہیں، یعنی اگر واقعی ان کے اندر ایمان ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، یعنی ان کو بجائے اس بات کے کہ دوسرے ان سے خوش ہوں بلکہ اللہ کو اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور چارہ نہیں کہ جس سے یہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا سکیں جس کو کرنا ہے۔ یہاں سے ہمیں جو ایک کردار نظر آتا ہے وہ کون سا ہے؟ जो इधर से उधर बातें करने वाला, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में बड़े बनना, जचना, ताकि देखें कि ये करते क्या हैं और इनका ये मामला कैसा होगा और ये हमारे साथ इस मामले में किस तरीके से काम करेंगे। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए फरमाया गया कि देखो, तुम जो बातें भी करते हो ये कल तुम्हारे सामने आएंगी। फिर न कहना कि पता नहीं चला, फिर न कहना खबर नहीं हुई। तुम जो भी तकलीफें अल्लाह के नबी को दे रहे हो, अल्लाह ताला खुद ब खुद उनके लिए इस चीज में से ऐसे रास्ते बना देता है कि वो फिर तुम्हारी चोरियों को पकड़ लेते हैं। इससे पता क्या चलता है कि बाज लोग सिर्फ बातों से खुश करना चाहते हैं, अमल नहीं करना चाहते, उनकी जिंदगी के अंदर अमल नहीं होता, लेकिन अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए फिर इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करते हैं, और फिर जहां जरूरत पड़ती है अपनी बातों को सच करने के लिए कसमें भी खाने लगते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि सूरह तौबा में बार बार कसमें खाने की बात आ रही है। इसी तरह कसम खाने को आपने क्या फरमाया कि ये झूठा होने की अलामत है। जो शख्स सच्चा होता है उसको कसमें नहीं खानी पड़ती, और जो सच्चा हो झूठा होता है फिर वो कसमें खा खा के अपनी बात को सच करवा देता है, हालांकि इससे कोई बात फायदे की नजर नहीं आती, इससे कुछ काम नहीं होता। तो ऐसे तमाम लोगों को अपनी फिक्र करनी चाहिए कि हम कल अल्लाह के यहाँ जब जाएंगे तो हमारा क्या मुकाम होगा। और फिर आखिरी आयत में फरमाया, अलम यालमू, क्या उन्होंने नहीं जाना, किन्होंने, मुनाफिकों ने, क्या, अन्नहु मन युहादिदिल्लाह, जो कोई भी अल्लाह व रसूलहु और उसके रसूल का मुकाबला करेगा उनके सामने आएगा, क्या है उसका अंजाम, फअन्न लहू नार जहन्नम खालिदन फीहा, उसके लिए जहन्नम की आग है, हमेशा रहने वाला है उसमें, जालिकल खिज्जुल अजीम, और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। यहाँ आप देखिए कि क्या बड़ी बात कर दी कि अल्लाह और उसके रसूल के सामने क्या करना, मुहादा, युहादे दिल्ला, हा दाल दाल इसका रूट है, किसी के मुकाबले में महाज कायम करना। इसी तरह तेजी के मानों में ये लफ्ज आता है, छुरी का ब्लेड, ये जो फल जिसको बोलते हैं, जो काटने वाला हिस्सा होता है उसको भी हद कहते हैं, हदीद भी लफ्ज इसी से है, यानी लोहे को कहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले पे आ जाते हैं, यहाँ मुनाफिकों की एक बहुत बुरी चीज बताई गई कि ये असल में मामला जो कर रहे हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ाई और झगड़े का मामला कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत थी, बातें करते थे, बैठे बातें करते हैं, इधर से उधर की लगाते, उधर से इधर की बातों को करते, तो अल्लाह ताला ने वो लोग जो अल्लाह के दीन के रास्तों में रुकावट बनते हैं उनको क्या साबित कर दिया इधर, कि ये अल्लाह ताला और उसके रसूल के रास्तों में रुकावटें बनाते हैं। अब ये रुकावटें कई किस्म की हो सकती हैं, बाज दफा जुबानी कलामी की जाती हैं, होती हैं, बाज दफा अपने अमल से दिखाया जाता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के सामने मुकाबले पे आ गए। यहाँ मैं इस आयत को पढ़ रही हूँ तो मेरे सामने फिर सूरह बकरा की वही आयत आती है जो आयत रिबा है, कि जिसमें सूद खोर को क्या कहा गया कि अगर तुम नहीं छोड़ते तो फाजनु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलि, तो फिर तैयार हो जाओ, ऐलान पा लो, इत्तला पा लो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए। आप देखिए वहां जंग की बात है, हर्ब मिनल्ला या युहादे दिल्ला, या ये छोटी बात है। कभी अगर इंसान अपने हालात पे गौर करके देखे, कोई ऐसा काम जिसको अल्लाह ने नहीं पसंद किया या जिसको करने का हुक्म नहीं दिया, और अगर हमारी जिंदगी में वो काम या वो चीज आ जाती है तो ये असल में चैलेंज करने वाली बात है। नमरूद ने भी चैलेंज किया था कि लाओ फिर तुम अपने लश्करों को और मैं अपने लश्करों को लाता हूँ। अल्लाह ताला के सामने जब ऐसे मामले किए, सिर्फ मच्छरों की फौज आई और उसको नीस्तो नाबूद कर दिया उसको। अगर आप कोई अल्लाह ताला को चैलेंज करता है या अल्लाह के दीन को चैलेंज करता है तो क्या वाकई फिर उससे उसके साथ मामला बनता है? तो खुलासा वो यही है कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च क्यों नहीं होता, अल्लाह की दी हुई जगहों पे खर्च क्यों नहीं होता, क्योंकि दिलों में मुनाफ़िकत होती है, और मुनाफिक किसी का भी नहीं होता, ना अपना ना किसी का। और इनकी आदत क्या होती है कि जब इनको फायदा मिले तो ये उस चीज को अच्छा कहते हैं, और जब इनसे वो फायदा रोक लिया जाए तो ये उसी काम को बुरा कहने लगते हैं। हर दौर के अंदर लोगों का यही मसला रहा कि जब माली फायदे मिलते हैं दीन से तो दीन को पसंद करते हैं, अल्लाह के दीन के साथ जुड़ना चाहते हैं। जहां आजमाइशें आने लगती हैं, जहां परेशानी आती है, तो वहां इनकी टोन चेंज होने लगती है। ये वहां वो बात अपने अंदर महसूस नहीं करते कि जैसी की होनी चाहिए। और हम सबको अपना मुहासवा लेने करने की जरूरत है। क्या वाकई हम भी अपने आप को बेहतरीन तरीके से मुसलमान साबित करते हैं, या सिर्फ हम अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले कर रहे हैं? अब देखिए कि किसी को ललकारना क्या तस्वुर आता है जहन में। मैदान जंग है, कोई ललकार है, आओ मैं तुम्हें पकड़ू, आओ तुम क्या कहते हो। जब हम गुनाह करते हैं ना, असल में वो भी एक ललकार होती है कि अल्लाह ताला हम तेरे सामने आ गए, अब तू बता कि हम से कैसे बचेगा। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे।